ओम शांति। बाबा ने हम सबको दिव्य जन्म देते ही दो विशेष सौगात दी। हरेक ब्राह्मण आत्मा को दिव्य जन्म मिला और दिव्य जन्म के साथ साथ दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र सौगात के रूप में बाबा ने हम सबको दिए। सभी ब्राह्मण आत्माएं यदि दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र की सौगात को संभाल करके रखती हैं तो उन्हें हर कदम में सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि ज्ञान की धारणा का सबसे मूल बुद्धि है। हम सब ने बाबा के महावाक्य सुने हैं, बाबा जो परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, जिसके ज्ञान अमृत से मनुष्य देव पद को प्राप्त कर रहे हैं, इतना ऊंचा ज्ञान धारण करने के लिए कैसा पात्र चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे सोने का बर्तन चाहिए, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अगर बर्तन मैला है और दूध उसमें डाला जाएगा तो फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा का जो ज्ञान अमृत हम सब सुन रहे हैं उसकी सहज धारणाएं उनके जीवन में होती जिनकी बुद्धि बहुत स्वच्छ है, दिव्य है, पवित्र है। अगर किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है, किसी भी प्रकार बुद्धि में अहम है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, अगर बुद्धि अभिमान वाली है तो बाबा का ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठता नहीं। भले वो रोज मुरली सुनता रहे, बाबा जो इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाता है उसे धारण करना सहज नहीं लगता, बुद्धि में एक बात भी टिकती नहीं, क्योंकि बुद्धि कहीं न कहीं से अस्वच्छ है। इसलिए बाबा ने हम सबको जन्म से ही ये वरदान दे दिया, बच्चे पहले बुद्धि को दिव्य बनाओ। आप लोगों ने सुना होगा बाबा कहते आए हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, बहुत गुरु किए हुए हैं, बहुत भक्ति के अंदर फंसा हुआ है और जब तक उसकी बुद्धि से वो भूसा नहीं निकलता तब तक ये ज्ञान उसकी बुद्धि में टिकता नहीं है, धारण नहीं होता। किसी भी प्रकार का अहम है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है, उस बुद्धि में बाबा के ज्ञान अमृत को धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले बुद्धि की स्वच्छता, दिव्यता बाबा हम सबको वरदान के रूप में देता है। बच्चे अपनी बुद्धि को बहुत सब बातों से, सब बुराइयों से मुक्त रखकर बहुत स्वच्छ और पवित्र दिव्य बुद्धि बनाओ। तो सबसे पहले मैं दिव्य बुद्धि के ऊपर ही आपको कुछ बातें सुनाऊंगा, क्योंकि सबसे जरूरी है इस ब्राह्मण जीवन में हमारी बुद्धि सदा सालिम रहे, स्वच्छ रहे, शक्तिशाली रहे, जिसमें हम हर बात को समझ सकें, यथार्थ को परख सकें, यथार्थ को निर्णय कर सकें और निर्णय करके हम सफलता को हासिल कर लें। अगर कोई व्यक्ति परख नहीं पाता राइट क्या है, रांग क्या है, बुद्धि उसकी थकी हुई है, उलझी हुई है, कहीं फंसी हुई है, उसकी बुद्धि में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, वो राइट और रांग की जजमेंट नहीं कर पाता। इसलिए जब तक वो समझ ही नहीं सकता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब तक वो सही मार्ग पर चल नहीं सकता। उलझता रहता है, दुविधा के अंदर भटकता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने की आवश्यकता है। दिव्य माना पवित्र है, स्वच्छ है, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की किसी की भी बातें नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई आत्माएं अपने किसी विशेषता के आधार से किसी आत्मा की बुद्धि को प्रभाव में ले आती और कोई आत्माएं नेगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं। न नेगेटिव का प्रभाव आत्मा पर पड़े, न किसी की पॉजिटिव की विशेषताओं का ऐसा प्रभाव पड़े जो उसके ही झुकाव में, प्रभाव में, लगाव में आत्मा आ जाए। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है हम अपनी बुद्धि को चेक करें, इस बुद्धि पर किसी भी आत्मा का कैसे भी कोई प्रभाव, कोई छाया पड़ी हुई तो नहीं है। ये बुद्धि बहुत निर्मल, स्वच्छ, यथार्थ, एक टिक स्थित हो सकती है। आप सबने देखा होगा जो न्यायालय होते हैं, जहाँ जजमेंट मिलती है, वहाँ एक तराजू दिखाते हैं और उस तराजू के जो दोनों जो पलड़े हैं वो समानता में जब आते हैं तो यथार्थ निर्णय माना जाता है। लेकिन उसके साथ वो जो कांटा है, तराजू का कांटा ऊपर के कांटे के सामने जब आता है तब बैलेंस बनता है। इस जीवन में भी जब हमारे सामने केवल एक बाबा बुद्धि के सामने रहता है तब बुद्धि स्वच्छ बनती है और ठीक यथार्थ निर्णय दे सकती है। इसलिए बुद्धि को बर्तन भी कहा है, बुद्धि को तराजू भी कहा है। हर एक बुद्धि के तराजू से नाप सकता है कि बाबा जो बता रहे हैं, जो आज तक सुना है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। कई लोग मिला देते हैं कि जो उस संस्था में कहा जाता है, जो वहां सुनाया जाता है, वही यहीं भी सुनाते हैं। लेकिन जब बुद्धि का तराजू बैलेंस में आता है, पता चलता है कितना लोगों ने मिक्स कर दिया है ज्ञान के अंदर, और मिक्स होने के कारण उसको धारण करने में मेहनत है। लेकिन बाबा ने जब हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना दिया और हमने पहचान लिया यथार्थ क्या है, सत्यता क्या है, तो उसको सहज रीति से हम ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। फिर दूसरा बाबा कहते हैं कि ये बुद्धि एक दर्पण है, इस दर्पण के ऊपर बाबा की अगर किरणें आ रही हैं, करंट आ रही है, लाइट आ रही है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। केवल हम अपनी बुद्धि को यूज नहीं करते, लेकिन बाबा की किरण, बाबा की करंट लेते और फिर इस बुद्धि के द्वारा हम दूसरों को सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा हम सबको कहते हैं, बच्चे तुम्हारा ये दर्पण बुद्धि का बहुत साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताकि बाबा की किरणों को आप कैच कर सको। और ऐसी स्वच्छता के लिए मैं हमेशा तीन चार बातें बताता रहा हूँ, आप सबने शायद सुनी हो। कोई भी बात की स्वच्छता तब आती है जब पहले एकाग्रता होती है। एकाग्रता के बाद उसमें स्थिरता आती है। मिसाल के तौर पर जैसे कहीं पानी बहते हुए इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा होने लगता है, तो इकट्ठा होते होते एकाग्र होकर स्थिर होता है और स्थिर होने के बाद उसकी जो मैल है, कण है, वो धीरे धीरे तले के अंदर चले जाते और वो पानी स्वच्छ हो जाता है। फिर उस स्वच्छता में स्पष्टता हो जाती है, चाहे वो जितना भी गहरा हो, उसमें जो चीज डाली जाए, जो चीज होगी नीचे तक, वो बड़े रूप में स्पष्ट दिखाई देगी। कई बार हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, हम अपनी कमियों को भी महसूस नहीं कर पाते, हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते। उसका एक मूल कारण है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और उसका कारण एकाग्रता का अभ्यास नहीं है। मैं एक बात अभी की कहना चाहता हूँ, हम अभी लाल लाइट के बीच में आए थे, योग चल रहा था, इतनी आवाज बाजार के अंदर भी नहीं होती जितनी योग के अंदर चारों तरफ से बोल चाल की आवाज थी। यदि हम योग के अंदर भी स्थिर नहीं हो सकते, मन और बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते, आवाज में आने का इतना रस है, तो स्वच्छता कैसे आएगी, विचार करने की बात है। कल हम प्रभु मिलन मनाने के लिए यहाँ आए हैं, बाबा के साथ मिलन मनाएंगे, उनकी पधरावणी का, उनके वरदानों का लाभ लेंगे, शक्तियां ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर इसी तरह से आवाज का वायुमंडल रहा तो अव्यक्त मिलन का सुख नहीं ले सकेंगे। इसलिए मैं अपनी माताओं से विशेष अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कल के दिन सब लोग मौन ले लो। ले सकती हैं माताएं? ले सकती हैं? इतनी आवाज, इतनी हलचल, भले 25-30 हजार की सभा हो, बाबा तो एक मिनट में सबको उड़ा के ले जाना चाहता है, साइलेंस में कराएगा, अनुभव कराता है। लेकिन अगर अमृत वेले से ही अभ्यास आप सब कर लेंगे एकाग्रता का, स्थिरता का, स्वच्छता का, तो मैं समझता हूँ बाबा के अवतरण का अनुभव कर सकेंगे। कई लोग भले पीछे कोने में बैठे होते हैं, उनको पता चलता है कि बाबा अभी मूल वतन से सूक्ष्म वतन में आए, ब्रह्मा बाबा के आकारी तन को लिया, और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों ही साकार में दादी के तन में प्रवेश हुए। कोने में बैठी हुई आत्मा भी अनुभव करती है अगर उसने बहुत एकाग्रता का, अंतर्मुखता का अभ्यास किया है। तो आप सब आए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि कल के दिन कम से कम इस वतन को, साकार वतन को अव्यक्त वतन बना दें। ये बुद्धि बहुत दिव्य बन जाएगी, बहुत स्वच्छ बन जाएगी, आपको राइट और रॉन्ग का अनुभव होने लगेगा, सत्यता क्या है उसका स्पष्ट दर्शन होने लगेगा, और एक बार अगर उसका अनुभव कर लिया तो जीवन में आप कहीं भी होंगे, अनुभव को नेत्र कहा जाता है, वो दिव्य नेत्र से बाबा को आप देखेंगे, अनुभव होने लगेगा उस सुख का, उस आनंद का, उस मिलन का, परमानंद का। दूर बैठे भी बाबा को आप इन नजरों से देख सकेंगे, उसके लिए दिव्य नेत्र की जरूरत है। दिव्य बुद्धि लिफ्ट का काम करती है। लिफ्ट में जैसे हम सीढ़ियां नहीं चढ़ने चाहते हैं तो लिफ्ट लगाते हैं, कई मंजिल अगर हमें पार करनी होती तो लिफ्ट का सहारा लेते हैं, ये बुद्धि जिसकी दिव्य है वो लिफ्ट का काम करती है। जिस फ्लोर का अनुभव करना चाहो, जिस स्थिति का अनुभव करना चाहो, शांति की शक्ति का, उस डबल लाइट स्थिति का, उस निराकारी दुनिया का, निराकारी स्थिति का अगर अनुभव करना चाहते तो उस अनुभव का यंत्र केवल दिव्य बुद्धि है, और उसको लिफ्ट के रूप में यूज करो, ये बाबा ने आपको, हमको गिफ्ट के रूप में दी है। इतनी स्वच्छ बुद्धि बनाई है, कितनी मैली थी, क्या खाते थे, कैसा संग करते थे, कैसा व्यवहार था, कैसी वार्तालाप थी, कलयुग के अंदर हर एक आत्मा की बुद्धि मलिन हो गई थी, और बाबा ने अपना बच्चा बना करके हमारी बुद्धि को बिल्कुल क्लीन कर दिया। ऐसी बुद्धि बनाई है जिसके अंदर कोई का भी द्वेष नहीं, कोई के लिए नफरत नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, कोई अस्वच्छता नहीं। ऐसी शुद्ध बुद्धि में भी अगर बाबा की शक्तियां विराजमान नहीं होती, बाबा के मिलन का अनुभव नहीं होता, तो चेक करना, जरूर कहीं न कहीं बुद्धि पर मलिनता है, और उस मलिनता को समाप्त करना ही है। जब तक उसको समाप्त नहीं किया तब तक इस दिव्यता का अलौकिक सुख नहीं ले सकते। ये बुद्धि विमान का भी काम करती है। जैसे फास्ट स्पीड वाले विमान जितने भी होते उनको बहुत डबल रिफाइन साधन दिए जाते हैं, कोई भी प्रकार का मिक्स नहीं होता, पेट्रोल भी बहुत डबल रिफाइन होता है। हम सबको बाबा ने बुद्धि का विमान दिया है और इस बुद्धि के विमान से हम सब तीनों लोकों की सैर करते, अभी अभी साकार वतन में हैं, अभी अभी अव्यक्त वतन का अनुभव होने लगे, अभी अभी मूल वतन का अनुभव होने लगे। कौन सी शक्ति है? ये जादू मंत्र नहीं है, लेकिन ये बाबा ने एक एक बच्चे को दिव्य बुद्धि दी है, और जिसकी दिव्यता, बुद्धि की दिव्यता बढ़ती जाती है, उसको बहुत सहज ये तीनों लोकों की सैर करना, तीनों काल उसके आगे स्पष्ट हो जाते, उसका भटकना बंद हो जाता है। इसलिए दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्माएं हर कदम में सफलता का अनुभव करती हैं। कभी उनको लगता ही नहीं है कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। हर कर्म क्या, हर संकल्प भी उसके सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन अगर संगम पर इस वरदान को, इस गिफ्ट को हम सब ने संभाल कर रखा है, तो इसलिए हम सबको कहेंगे, सभी इस दिव्य बुद्धि को वरदानी बनाकर इस गिफ्ट को संभाल करके रखें। कोई भी प्रकार की कोई भी बात दिखाई देगी, जब बड़े संगठन होते हैं, बड़ा घर होता है, बड़ा परिवार होता है, तो कई बातें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, लोग बताते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव ना आए तब ये बुद्धि स्वच्छ रह सकती है। अगर कोई भी चिंतन चल गया, ये ऐसे है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता, सुनाने वाले कितना भी सुनाएं, लेकिन मेरी बुद्धि पर उसका प्रभाव न पड़े, तब ये बुद्धि बहुत स्वच्छ बनकर यथार्थ निर्णय ले सकती है, और यथार्थ निर्णय लेगी तो यथार्थ निर्णय की सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बाबा किसी पर मेहनत नहीं करने आया है, ऐसे कोई आशीर्वाद करके, कृपा करके नहीं कह देता हो जाएगा। वो कहता है, बच्चे तुम अपनी बुद्धि को दिव्य रखो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदान दिया है, लेकिन वरदान को यूज करने का तरीका बताया है। अगर तरीका नहीं आता है तो कहेंगे, बाबा तो कहता है सफलता कहाँ मिलती है। तरीका अपना नहीं रहे हैं, उस विधि को हम ला नहीं रहे हैं, और हम सिद्धि अगर चाहेंगे तो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बुद्धि का विमान, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का किचड़ा, मन मत और पर मत का मिक्स होने नहीं देना। श्रीमत का डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए। बाबा ने श्रीमत केवल मुरली में दी है, सब अंडरलाइन करना। कोई आत्माएं कहें श्रीमत है, बाबा कहता बच्चे कंपेयर करो बाबा की मुरली क्या कहती है। मुरली के अंदर सब यथार्थ श्रीमत हम सबको मिल रही है। जिसने बाबा की मुरली पर ध्यान दिया है, हर प्रश्न का उत्तर उस मुरली के अंदर है। लेकिन दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं धीरे धीरे, जितनी बुद्धि रिफाइन बनती जाती है, मुरली वही है, भले कोई ने 5 बार सुनी होगी, कोई ने 10 बार सुनी होगी, क्योंकि डिवाइस कोर्स है, लेकिन जितनी वो बुद्धि की दिव्यता बढ़ती जाती उतनी उसमें नवीनता का अनुभव होता है। ऐसे लगता है आज बाबा ने बड़ी नई बात कही, ये तो आज बहुत नई बात हमको लगी। तो ऐसी बातों का अनुभव दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, ये दो सौगातें हर एक अपने साथ रखना। दिव्य नेत्र से हम बाबा को, अपने घर को, सूक्ष्म वतन को, और अपने 5000 वर्ष की कहानी को बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। ये बहुत दूरादेशी दूरबीन का काम करता है। जैसे दूरबीन लगा देते हैं, किसी बड़ी सिटी में आप जाएंगे तो जब सबसे ऊंची मंजिल होगी उस मंजिल पर दूरबीन रख देते हैं, और उस दूरबीनी से देखो तो ऐसे बहुत दूर दूर के शिप, बहुत दूर दूर की बिल्डिंग्स ऐसे दिखाई देती जैसे सामने देख रहे हैं। बाबा भी हम सबको दिव्य नेत्र देता है, कहता है बच्चे इस दिव्य नेत्र से तुम अपने घर को ऐसे देखो जैसे बिल्कुल कल तो हम यहाँ गए थे, अब जाने वाले हैं। 5000 वर्ष की कहानी को ऐसे अनुभव कर लो जैसे कल ही तो हमने सतयुग में पार्ट बजाया था, हम ही तो देवता बने थे और फिर हम कल बनने वाले हैं। ये दूरबीन का काम ये दिव्य नेत्र करता है। पूरे इतिहास को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आत्मा जो इस शरीर के अंदर छिपी हुई है दिखाई नहीं देती, इन चर्म चक्षुओं से तो चमड़े का शरीर ही दिखाई देता, लेकिन अगर उसका दर्शन करना चाहते हैं तो दिव्य नेत्र से हम आत्मा को देख सकते हैं। इसलिए बाबा अपने नेत्र के लिए कहता, बच्चे इस नेत्र में कोई भी धूल कोई भी धूप का प्रभाव होने नहीं देना। अगर किसी का थोड़ा भी नेत्र कमजोर हो जाता है तो डबल दिखाई देने लगता है, एक एक चीज अनेक रूप में दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर ये नेत्र स्पष्ट है शक्तिशाली है तो जो है जैसा है, खुद जो है जैसा है, बाबा जो है जैसा है, ज्ञान जो सत्य है उसको स्पष्ट रूप से समझ सकता है, जान सकता है, धारण कर सकता है। लेकिन ये दिव्य नेत्र शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अटेंशन की जरूरत है। किसी भी व्यर्थ की धूल आने नहीं देना, कोई भी धूप न पड़े ऐसी। इसलिए गुण ग्राहकता का हरा चश्मा पहन करके रखो। अगर ये चश्मा लगा हुआ है इस पर धूल नहीं आएगी। हर आत्मा के कोई न कोई गुण है, कोई न कोई विशेषता है, हर आत्मा विशेष आत्मा है। अगर ये चश्मा हर एक ने लगा दिया तो ये नेत्र बहुत स्वच्छ रहेगा, क्लीन रहेगा और बहुत स्पष्ट देख सकेगा। इसलिए बाबा ने हमें सफलता मूर्त बनने के लिए 2 सौगातें दी हैं और हर एक को दिव्य जन्म मिलते ही मिली हैं। लेकिन किसने इसको संभाल के रखा, किसने इसको बेकार कर दिया, उसके हाथ में है। हम सबको ये वरदान मिले हैं। रोज अमृत वेले ये वरदान ले लो कि बाबा ये बुद्धि हमारी सदा स्वच्छ रहे, सदा दिव्य रहे, यथार्थ निर्णय दे, समय पर निर्णय दे। इसके लिए बाबा ने मुझे जब वरदान ये दिया था दिव्य बुद्धि का, तो बाबा ने एक शब्द रिवाइज किया था। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने इस बुद्धि को कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, केवल स्व उन्नति के चिंतन में इसको लगाया है, उसी सेवा में बिजी किया है, इसलिए इसको दिव्यता का वरदान मिलता गया है। और ये दिव्य वरदान जो चाहे समय पर यथार्थ कर सकता है, समय पर हर कार्य कर सकता है, क्योंकि बुद्धि दिव्य है और दिव्य बुद्धि के कारण सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आज तक का मेरे जीवन का अनुभव है। कभी लगता नहीं ये असंभव कार्य है, ये बड़ा कार्य है, ये कैसे हो सकता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। कराने वाला बाबा है। लेकिन अगर बुद्धि में कोई भी प्रकार की अस्वच्छता नहीं है, बाबा की टचिंग आती है और बाबा अपना काम अपने आप करा लेता है। करण करावनहार वो है। हम सिर्फ अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। एक एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा बाबा का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाए। कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसकी मैल को, उसकी गंदगी को अपने पास नोट नहीं करो, नहीं तो ये मैला हो जाएगा, आपके पास बाबा की शक्तियां नहीं आएंगी। इसलिए बाबा की शक्तियां अगर लेनी है, उनकी प्रेरणाएं लेनी है, उनकी टचिंग का अनुभव करना है, तो ये बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, दिव्य चाहिए, फिर सफलता तो छमछम करके आएगी। कई बार कोई कहता है सेवा में सफलता नहीं मिलती, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी वहाँ की जमीन कलराठी है, ऐसा है ऐसा है, ये विघन है ये विघन है, लेकिन बाबा के इस वरदान को उसने प्रयोग कम किया है। बहुत अच्छी तरह से इस वरदान को प्रयोग करो, बहुत स्वच्छ बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से। बाबा क्या चाहता है, बाबा क्या टचिंग कर रहा है, कैच करो। अमृत वेले उठ करके बाबा के साथ तराजू की तरह ऐसे कांटे को कांटे से सेट कर दो, ठीक ठीक पता चलेगा, ये करो तो सफलता मिलेगी, ये कर लो सफलता मिल जाएगी, ये नहीं करो इसको छोड़ दो। ऐसी टचिंग आनी चाहिए, इतना हमारा बाबा के साथ संगम पर डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चे को बाबा ने डायरेक्ट लाइन दी है, डायरेक्ट कनेक्शन दिया है, लाइन फ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए जब डायरेक्ट शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, आ सकती हैं, तो हम मूंझे क्यों, उलझे क्यों, असफलता का अनुभव क्यों करें, असंतुष्टता का अनुभव क्यों करें, अगर बाबा की टचिंग आई, कैच किया, कर लिया, सफल हो गए। तो मैं आपको आज सफलता के 7 सूत्र बताता हूँ, अंडरलाइन करके रखना। कोई भी कार्य क्षेत्र पर जाएंगे, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो 7 बातें अंडरलाइन होनी चाहिए। कोई भी कमी होगी तो हो सकता है असफल हो जाएं। पहली बात, किसी भी क्षेत्र में सेवा के लिए आप जाएं, बाबा हमेशा कहता है अपनी वृत्तियों से उस स्थान की वायुमंडल को, वाइब्रेशन को परिवर्तन करो। याद होगा आपको, जब बाबा का ने विदेश में पहले का ग्रुप भेजा था 7 भाई बहनों का, 71 में बाबा आए और बाबा ने उनको कहा, सामने अव्यक्त बाबा मिल रहे थे। पहला प्रश्न बाबा ने पूछा कि आप जिस स्थान पर जा रहे हो, क्या वहाँ की सेवा की है? तो सब सोचने लगे सेवा करने जा रहे हैं और बाबा पहले से पूछ रहा वहाँ की सेवा की है, तो शायद 5000 साल पहले की बात बाबा पूछ रहा होगा। बाबा ने कहा नहीं, जिस स्थान पर बाबा भेज रहा है, पहले बच्चों को अपनी मनसा के द्वारा उस स्थान के वातावरण को चेंज करना चाहिए। आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, जो सेवा करने जा रहे हैं, कभी ये न कहें पता नहीं वहाँ लोग सुनेंगे या नहीं, समझेंगे या नहीं, वो तो दूसरे धर्म वाले हैं, वो दूसरे जाति वाले हैं, दूसरी बातों को मानने वाले हैं। बाबा कहता बच्चे तुमने बीज गलत बो दिया, सफलता कैसे मिलेगी? अगर सफलता चाहिए तो क्यों नहीं सुनेंगे? बाबा का हर स्थान पर बच्चा है, जरूर सुनेगा। हर एक को मुक्ति चाहिए, हर एक को जीवन मुक्ति चाहिए, हर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बाबा के परिवार का है, बाबा का रतन है। अगर बहुत पॉजिटिव संकल्प लेकर अपनी वृत्तियों से उस स्थान को हम पहले ही चेंज कर लेते, स्थूल में साकार में जब जाते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता, सफलता मिल जाती है। इसलिए सफलता का आधार है जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, जो सेवा करने जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव संकल्प से अपनी वृत्तियों से उस स्थान के वायुमंडल को, उस स्थान के वातावरण को चेंज कर दो। इसलिए रूहानियत की वृत्ति से वायुमंडल चेंज करने की प्रेरणाएं बाबा दे रहा है, बहुत अच्छी सफलता का साधन है। चाहे लौकिक जवाबदारी के लिए जाओ, चाहे अलौकिक सेवा के लिए जाओ, चाहे किसी से कोई काम पड़ा है वहाँ पर जाओ, लेकिन पहले अपनी वृत्तियों से उस आत्मा की धरनी को तैयार करो कि जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी, ये भगवान की बातें सुनाने के लिए हम जा रहे हैं, उसका कार्य कराने के लिए जा रहे हैं, ये अवश्य करेगा। आप जाएंगे तो कम से कम उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा और सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे जब वाचा से किसी से बात कर रहे हो, वाणी से बात कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपकी मनसा बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि मनसा और वाचा दोनों का समान बैलेंस है तो मनसा स्नेह की शक्तिशाली दृष्टि देखकर वायुमंडल बना देती और वाणी द्वारा जो कुछ हम कहते हैं उसके अंदर उतरता जाता है। इसलिए दोनों सेवाएं साथ साथ होनी चाहिए, मनसा सेवा का समय अलग, वाणी की सेवा का समय अलग नहीं। लेकिन जब हम वाणी की सेवा के लिए जा रहे हैं, हम क्लास कराने आए, भाषण करने गए, हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जब हम वाणी से किसी को कोई बात से चेंज करना चाहते हैं, उनको अपना बनाना चाहते, बाबा का बनाना चाहते हैं, तो मनसा हमारी बहुत शुद्ध, बहुत सकारात्मक, बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, ताकि हमारी वाणी उसके अंदर फिट होती जाए, चेंज हो जाएगा वो। ये सफलता का एक दूसरा साधन है। तीसरी बात है कि हम साधारणता की, लौकिकता की प्रभाव डालने का प्रयास न करें। कई लोग अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी बुद्धि का, अपनी चिंतन की पॉइंट्स का प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अलौकिकता की छाप डालें कि ये अलौकिक है, ये न्यारा है, लोगों जैसा नहीं है। हमारी दादियों ने जो पहले सेवाएं की हैं, भाषण किए हैं, प्रवचन किए हैं, उनमें कोई भी लिंक नहीं थी, कोई भी ऐसे टॉपिक पर वो भाषण नहीं करती थी, बाबा की बातें सरल रूप से सुनाती थी और लोगों को बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हो जाते थे। वो समझते थे इतना ऊंचा ज्ञान इन देवियों ने कहां से पाया है। आज हम लच्छेदार भाषण करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट सुना दें, ऐसे क्लास करा दें, ऐसी बातें सुना दें, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। कारण यही है कि हम अपनी अलौकिक जीवन की छाप नहीं डाल पाते। बाबा ने हमें इतना अलौकिक बनाया है, इतना न्यारा प्यारा बनाया है, हमारे अंदर लौकिकता का भान न रहे तो सफलता मिलेगी। हम अलौकिक हैं, अल्लाह लोग हैं, ये साधारण नहीं है। किसी से भी बात करें तो बाबा हमेशा कहता है, बच्चे आत्मा निश्चय कर, आत्मा समझ कर, आत्मा भाई से बात करो, अपने आप प्रभाव पड़ेगा। ये अलौकिकता है हमारी, साधारणता नहीं है। रूप रंग भाषा देख करके हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा को देखकर, उसके कल्याण की भावना रखकर उसको हम ज्ञान दे रहे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। चौथी बात है, बाबा ने हम सबको देना सिखाया है, लेकिन कई बार सेवाओं में लेने का संकल्प आ जाता है। इसकी सेवा करेंगे, ये ज्ञान में चल जाएगा, ये सहयोगी बनेगा, ये हद की कामनाएं हमारी सफलता को दूर कर देती हैं। एक अंदर की भावना है कि जो बाबा ने इतना हम सबको दिया है, इनको भी कुछ मिल जाए, ये भी कुछ अंजलि ले ले, ऐसा ना हो बेचारा वंचित रह जाए। भले करोड़पति हो, अरबपति हो, इस कलयुग की कितनी भी संपत्ति हो इसके पास, लेकिन सुख और शांति की संपत्ति से ये भी वंचित है। इसको प्राप्ति कराने के लिए बाबा ने मुझे भेजा है, इससे मुझे क्या चाहिए? अगर इसको कुछ करना होगा, सफल भाग्य बनाना होगा, तो भले भगवान के कार्य में बने, सफल करे, मुझे तो इसे कुछ नहीं चाहिए। एक निष्काम वृत्ति से, देने की भावना से, उसे कुछ प्राप्ति कराने की भावना से अगर सेवा की जाए, अगर उसके पास जाया जाए, तो जरूर वो सुनेगा भी और उस पर एक छाप पड़ेगी कि ये लोग बहुत निष्काम वृत्ति से सेवा करते हैं, इनके अंदर कोई भी लेने की मांगने की कामना नहीं है, ये सेवा की सफलता का साधन है। पांचवी बात, बाबा को हमने देखा, हमने अपनी दादियों को देखा, बहुत बड़ी दिल, बहुत विशाल दिल। आज इतना बड़ा जो विशाल हाल बना, इतना बड़ा जो बेहद शांतिवन बना, ज्ञान सरोवर बना, पांडव भवन बना, इतना जो विस्तार हुआ है, ये हमारी दादी की विशालता की निशानी है। दादी प्रकाशमणि की दिल इतनी विशाल थी, कभी नहीं सोचा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन करेगा, सब बाबा कराने वाला है, कराएगा, ये बाबा का है, बेहद का है, हदे नहीं रखी। हद की भावनाएं सफलता से वंचित कर देती हैं। अगर भावनाओं के अंदर बेहद की वृत्ति आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ सफलता पीछे पीछे आ जाएगी। इसलिए जो हमने हदें बना ली हैं, उन हदों से निकलना होगा। हदें टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं। जब तक उन हदों से आत्मा नहीं पार होती, तब तक वो बेहद की सेवा में सफलता का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए हम सब बाबा की बेहद रचना, बेहद विश्व कल्याण की वृत्ति रख करके सेवाएं करें, हद रख करके नहीं। मेरी एरिया, तेरी एरिया, इसकी एरिया, उसकी एरिया, ये जितने भी साधन बनाए गए यज्ञ के अंदर, नियम बनाए गए, वो कोई भी प्रकार की टकराव की स्थिति न बने इसलिए बनाए गए, लेकिन इनके कारण टकराव पैदा हो जाए तो बाबा कहता है बहुत बड़ा विघ्न है। ये यज्ञ हमारा बाबा का निर्विघ्न चलता रहे, सेवाएं दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होती रहे, हर आत्मा को बाबा का पैगाम मिल जाए, हर आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाए, अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले ले। इसलिए हर एक को जो बाबा के बच्चे हैं उनको बहुत विशाल दिल रखकर बड़ी दिल से सेवा करनी चाहिए। कोई भी हदे हमारी मार्ग के अंदर रुकावट न डाल दें। मुझे क्या चाहिए, भगवान का संदेश मिल जाए, सब उसको पहचान लें, अपना जन्म से अधिकार प्राप्त करें, एक बहुत बड़ी भावना रखकर जब सेवाएं की जाएंगी तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। निमित्त और निर्माण भावना, हम सब बाबा के बच्चों को बाबा ने ये टाइटल दिया है कि बच्चे तुम निमित्त हो, और यहां तक बाबा कहते तुम निमित्त मात्र हो, केवल निमित्त मात्र हम इस शरीर के अंदर हैं सेवा के लिए। कराने वाला बाबा करा रहा है, उसके कार्य हैं, उसकी सफलता होनी ही है, सत्य ज्ञान स्पष्ट होना ही है, प्रत्यक्ष होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसको बादल किसको रोक सकते हैं, असत्यता को रोक सकते, सत्यता तो अपने आप बादलों के बीच में बाहर आ जाएगी। इसलिए हम सब जब सत्य मार्ग पर चल रहे हैं अवश्य एक दिन हरेक को इस बात को समझना ही है, मानना ही है। इसलिए हम कभी भी अपने निमित्त भाव को छोड़ करके मैंपन में ना आ जाएं। मैं करता हूँ, मेरी सेवा है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बाबा कहता तुम छोड़ के देख, मैं करा लूंगा, किसी से भी करा लेगा। करण करावन हार है, तुम अपना अहंकार दिखाओगे तो बाबा क्या कहेगा, ये मैं का जो बकरीपना है इसकी बकरीद कर दो, इसको जला दो। बाबा को ये मैंपन स्वीकार ही नहीं आता। इसलिए हम सब कभी भी ये न कहें मैं, बहुत निमित्त मात्र और निमित्त के साथ बहुत निर्माण भावना। और बाबा कहता बच्चे ये वाणी को निर्मल बनाओ, ये वाणी बड़े नुकसान कर रही है, अगर जरा भी कटु वचन जोर से बोल दिया, किसी के दिल को ठेस पहुंच गई मेरे वाणी से, वो बहुत दूर चला जाता है। इसलिए बहुत निर्मल वाणी, बहुत सरल भाषा से, बहुत मधुरता के साथ अगर हम सेवाएं करते हैं तो सफलता तो पीछे पीछे आती ही है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा भी कोई कटु व्यवहार हो जाता, बोल में थोड़ी कठोरता आ जाती है, वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा की एक चाहना है, क्या चाहता है बाबा, कि मेरे बच्चे अब अंतिम समय में संस्कार मिलन की दास करो। संस्कार वैरायटी हैं और रहेंगे, एक हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें मिला करके चलना है। और संस्कार मिलाने के लिए क्या करना होगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सॉरी करना पड़ेगा। अगर हम बहुत नम्र चित्त और निर्माण चित्त होकर के चलेंगे तब संस्कार मिलन की रास होगी, नहीं तो संस्कारों का थोड़ा थोड़ा टक्कर बहुत सेवाओं में रुकावटें डाल रहा है, बुद्धि को बहुत व्यर्थ में ले जा रहा है, उसमें अनेक प्रकार की अस्वच्छता आती जा रही है। इसलिए जहां तक हो सके हमें संस्कार मिलन की रास करनी है, मिलाना है, झुकना है, हाजी करना है, सब बाबा ठीक करेगा। बाबा ने एक बार कहा था बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं सबको सुधार लूंगा, तुम अपने को सुधार लो। गारंटी है ना बाबा की कि नहीं है, बाबा सबको सुधारेगा, हम अपने को सुधार लें बस। लेकिन कई बार हम दूसरों को सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसको देखो मैं सुधार दूंगा, वहां ये टकराव की स्थिति और अनेक प्रकार की रुकावटें शुरू हो जाती हैं। दो बातें बाबा हमेशा कहता है सफलता के लिए ध्यान पर होंगी, एक कहता है जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। अगर संकल्पों में हमारी दृढ़ता है कि करना है, ये होना है, ये बनना है, ये अपने को चेंज करना है, कुछ भी हो जाए कौन रोक सकता है। कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर दृढ़ता आ गई अंदर तो सफलता तो पीछे पीछे आएगी। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी कंप्लेन नहीं करो ये विघ्न है, ये रुकावट है, ये रोकता है, ये करता है, बाबा कहता नहीं, पहला तुम्हारा कमजोर संकल्प तुमको रोकता है। संकल्प को एकदम पावरफुल कर लो, शक्तिशाली कर लो, सब रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कहावत है, जहां चाह है वहां राह निकल आती है। जहां चाहना ही नहीं है वहां राह कहां से आएगी। इसलिए कोई भी विघ्न, कोई भी रुकावट है, अपनी चाहनाओं को, अपनी लगन को बढ़ाओ, विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसलिए जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। और जब सफल करने का सिद्धांत हम सब समझ लेते हैं, कई मुरलियां बाबा की इस पर चली हैं कि बच्चे सफल करो तो सफलता मिलेगी। हम सफल नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं सफल? हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारी सूक्ष्म श्वासें, हमारी संपत्ति कहाँ जा रही है? थोड़ा सा विचार करना, अगर सचमुच मुझे सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करनी है तो ये खजाने कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। संगम के सबसे बड़े खजाने हैं संकल्प और समय। संकल्प भी जो देखा उस पर चला दिया, जो मेरे काम की बातें नहीं उस पर चल रहे हैं, कैसे बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी? बुद्धि थक जाएगी, बहुत सोचने वाला थक जाता है। इसलिए धैर्यता से, बहुत शांत स्वरूप स्थिति से अपने संकल्पों की क्वालिटी को अच्छा बना लो, बुद्धि आपको ठीक निर्णय देगी, सफलता आपको पीछे पीछे मिलेगी। लेकिन सफल करो, समय को सफल करो, संकल्प को सफल करो, जो आपके पास स्थूल सूक्ष्म संपत्ति है उसको सफल करो, जो खजाने बाबा ने दिए उनको सफल करो। सफलता तो मिलनी ही है, पूरे कल्प के अंदर बाबा कहता गारंटी है। अगर संगम पर आपने अपनी संपत्ति सफल की है, कभी भी संपत्ति के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। करके देख लो, श्वास सफल की है, कभी भी हार्ट फेल नहीं होंगे। श्वास बाबा के काम में सफल की है, सेवा में लगाई है, चलते चलते श्वास क्यों रुकेगी? अगर इस प्रकार से हम सफल करना सीख जाएं, अगर हम समय सफल कर रहे हैं तो समय पर कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। वर्तमान समय, हर इंसान जो दुखी हो रहा है उसका मूल कारण है कहीं न कहीं लौकिक या अलौकिक से उसको धोखा मिल रहा है, और धोखा मिलने का कारण है वो यथार्थ परख नहीं पा रहा है, व्यक्तियों को परख नहीं कर पाता। कहते हैं भगवान को जानना तो सहज है, इंसान को परखने में बहुत मेहनत है, उसके अंदर क्या चलता है उसको कैसे समझा जाए। इसलिए अगर उसको समझना है तो ध्यान रखो, ये बुद्धि बहुत सरल, बहुत शीतल, बहुत शांत, बहुत धैर्यवत चाहिए। अधैर्यता के संस्कार को बाबा के आगे समर्पित कर दो। ये अधैर्यता बहुत नुकसान करती है, तुरंत जवाब दे दिया, तुरंत जोश में आ गए, तुरंत जो कहना था कह दिया, मैं तो सत्य पर हूँ, मैं सच्चे हूँ, बोल दिया, संबंध बिगड़ गए, रुकावटें आने लगी, फिर आप कितने भी प्रयास करो सुधरेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है सोच समझ कर, धैर्यवत होकर, यथार्थ बुद्धि के निर्णय को समझकर विवेक को यूज करो। कहीं दिल और दिमाग दो चीजें हैं, दिल भावनाओं को कहा जाता है, दिमाग विवेक को कहा जाता है। दोनों के बैलेंस से चलने वाली आत्माएं सफलता प्राप्त करती हैं। अगर केवल दिल की भावनाएं यूज करते रहते तो भी सफलता नहीं मिलती, कहीं न कहीं धोखा खा लेते, कहीं न कहीं फंस जाते। और अगर विवेक ही चलाते रहते हैं तो भी बुद्धि चलाते रहते और उसके कारण भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत बैलेंस से चलना सिखाया है। जो आत्माएं बैलेंस की कला को सीख गई हैं, न्यारे प्यारेपन का बैलेंस है, कर्म योग का बैलेंस है, हमारे यथार्थ व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, हर क्षेत्र में अगर हम बैलेंस से चलते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं, हमारी लाइफ ब्लेसफुल है, आनंददायक है, कभी भी दुख का धोखे का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि को बहुत स्वच्छ बना करके, बहुत स्थिर बना करके, इस वरदान को, इस सौगात को सदा साथ रख करके, हर कदम में सफलता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये न कहे क्या करूं, मुझे तो सफलता का अनुभव नहीं होता। अगर संगम पर भगवान मिला है फिर भी सफलता नहीं मिल रही तो सारे कल्प में कब मिलेगी, विचार करके देखो। हम बच्चों के कदम कदम पर पदम हैं, सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, इसलिए कोई भी कार्य क्षेत्र में कोई भी सेवा करो, मन की, वचन की, कर्म की, संबंध की, संपर्क की, हर क्षेत्र में सेवा सफलता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि को दिव्यता से संपन्न करना जरूरी है। तो बुद्धि को दिव्य बनाकर, बहुत स्वच्छ बनाकर, संकल्पों को श्रेष्ठ गति में ले जाकर हम सफलता का अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक मिनट के अंदर कल का दिन अव्यक्त मिलन का दिन है। चाहे जितने बाबा के बच्चे आए और चाहे जहाँ आपको स्थान मिले, मारा मारी नहीं, दौड़ा दौड़ी नहीं, ऐसे नहीं दौड़ो जो दरवाजे तोड़ दो, बहुत शांति से, बहुत प्यार से बाबा जहाँ भी बैठे होंगे हमको खूब भरपूर करेगा, अपने आप दृष्टि देगा, शक्ति देगा, लेकिन हमारी स्थिति गड़बड़ में ना आए। तो ऐसे साइलेंस में रह करके, अव्यक्त वातावरण बनाकर, बुद्धि को दिव्य रखकर, बाबा की प्रेरणाओं को अमृत वेले से कैच करो, और जब बाबा आए तो मधुर मिलन मनाकर खूब शक्तियों से भरपूर हो जाना। ओम शांति।